के दरमियान मीलों लंबा समंदर के रास्ते से एक रास्ता गुजर रहा है। तो आसमान न पिघल कर समुद्र में मिल रहा था, ताहदे निगाह नीले रंग का मंजर था। और वो कहते हैं कि ये जो एक पुल इन्होंने बनाया है वो मियामी से फ्लोरिडा के जजीरे तक का सफर करना कभी भी इतना आरामदेह नहीं था। पुल के ऊपर मीलों लंबा ओवरसीज हाईवे के नाम से मशहूर इंजीनियरिंग के एक हैरतनाक अजूबा ये है ओवरसीज हाईवे जनूबी सिरे से 42 पुलों पर 44 ट्रॉपिकल जजीरों पर 113 मील लंबा फैला हुआ ये पुल है। और क्या ओवरसीज हाईवे, दरअसल ओवरसीज रेल रोड के तौर पर शुरू हुई थी और ये दूरंदेश डेवलपर हेनरी मॉरिसन उन्होंने इसको किया जाता है। इन्हें फ्लोरिडा के बाप का नाम भी दिया जाता है। तो चलो इस छुट्टियों में चलते हैं, सारे के सारे फ्लोरिडा चलते हैं तो हम ओवरसीज हाईवे देखने के लिए चलेंगे।
जब आप इसकी बात कर रही हैं तो अरफा जी ऑस्ट्रेलिया
आपने देखे
पर, हाँ
आपने देखी
ऑस्ट्रेलिया में जो
यू हैड बीन देयर?
नो आई हैव नेवर बीन देयर पर्सनली, नहीं देखी, इसमें फोटो भी दिखा है बस। इसमें आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे कैसे जवान मर्द होते हैं।
अच्छा,
कि सब अगर आप किसी किश्ती में सफर कर रहे हो, आमिर वो वीडियो निकालना, अगर आप किसी किश्ती में सफर कर रहे हो और आपके किश्ती के करीब दो और का व्हेल्स होती है ना, वो छोटे साइज की व्हेल्स होती है, व्हेल्स दे आर स्टिल बहुत ह्यूज होती हैं।
वो किश्ती तो छोटा खिलौना ही होता है उनके सामने।
हाँ, मगर ये बड़ी बोट थी है। तो वहां गए ये और उनमें से एक जो था ना उसने कहा कि आई कैन गो डाउन एंड बॉडी स्लैम दिस, बॉडी स्लैम मतलब उस जैसे आदमियों को हमारे उर्दू में कहते ना पटकते हैं, वो पटकने का क्या कहना, मैं इसको जाके उसको
वेलने का
नहीं, इस शख्स ने कहा कि मैं जाऊंगा जाके इसमें से इसको
वेल को पकड़ूंगा
उसको स्लैम करूंगा, मैं उल्टा मारूंगा। तो साहब अमेर अगर आपके पास है तो वो वीडियो दिखा दो कि ये जो है उसने जो है 5-6-7 लोग थे उस पे बोट
कैसे देखिए,
ये देखिए साहब,
देखिए मैं बताती हूँ माजी भाई, ये तो बिल्कुल बेवकूफ गधे का बच्चा था।
ये देखिए, ये गया ये,
हाँ,
और इसने जाके वो उसको पकड़ने की कोशिश की, बगा दिया, वेरी स्लिपरी राइट, तो वो और 20 समंदर में कूद गया वो, और वहां जाके उसने जो है बॉडी स्लैम करने की कोशिश की और इसके बाद फिर वो वापस आया सही सलामत, ये वापस आ गया, उसको चार्ज किया पुलिस ने, उसको पुलिस ने
चार्ज। जी मैं बताती हूँ, ये तो मतलब वो अर्का इतनी भी छोटी नहीं होती कि एक आदमी उसको पकड़ के तो और पानी के बीच उसको स्लैम कर सके,
अबाउट स्टिल 15-20 feet
है। तो एक आदमी 15-20 feet 5 feet का आदमी वो कहाँ से उसको दुम से पकड़ के स्लैम करेगा? उसने उस वक्त मेरा ख्याल हुक्का पिया हुआ था
कुछ पिया हुआ तो जरूर था, और वो उसको वाइल्ड लाइफ के वो डिस्टर्बेंस के लिए उसको
और आपको पता है कि ये ऑर्का क्या करती है, ये फिर क्या करती है, उसको अगर चाहती ना, अगर ये चाहती
खा जाती उसको,
नहीं खाना नहीं था उसने, ये बड़ी लव करती है ह्यूमन बींग्स को, ठीक, तो वो क्या करती है उसको मुंह के साथ लेके इतना तेज चलती तो उस आदमी की हड्डियां ही टूट जानी थी, वैसी हड्डियां इसकी गल जानी थी। बहरहाल मैं साहब जा रही हूँ समंदर पर तैरती शेरा और आई एम गोइंग टू फ्लोरिडा नाउ, आई वॉन्ट टू सी दिस बिफोर आई
डाई, वापस आगे बता देता मुझे,
आई वॉन्ट टू सी दिस बिफोर आई डाई।
मैं आपको वो एक शख्स की बात बताई थी ना कि वो रेस्टोरेंट में जाता है, वो सुन के कहता है कि खाना बड़ा अच्छा था,
आपको देखता मैं जाके दिखाऊंगी। अच्छा,
अच्छी बात,
आई विल गो देयर।
बट ठीक है, फ्लोरिडा जा रही है तो
आई विल गो देयर।
ठीक है,
एक गाने की तरफ देखी थी, आप गाना सुनिएगा, नहीं टॉप ऑफ द आवर का गाना सुने साहब, टॉप ऑफ द आवर। और अगर आपको घर बेचना है या घर खरीदना है तो गिव मी अ चांस, हम 1% पे घर बेचते हैं, गिव मी अ कॉल, कंपैरेटिव मार्केट। होता यह है कि बाज़ोकात लोग जस्ट टू ग्रैब अ क्लाइंट, आप कॉल करते हैं, मेरे लिए भी बड़ा आसान है, हाँ जी मैं आ गई हूँ जी, आप बताएं कितने का, बट आई ऑलवेज मेक कंपैरेटिव मार्केट, ऑलवेज मेक कंपैरेटिव मार्केट कि इस इलाके में घर कितने के बिके हैं। मगर अगर एक दफा माइट बी बट आई एम हैप्पी द वे इट इज. मुझे एक शख्स ने, मैं मैसेज आपके साथ पढ़ के भी बल्कि शेयर करती हूँ, तो उन्होंने जो मुझे मैसेज वो बार बार कर रहे थे कि सो आई वॉन्ट टू हैव अ क्वेश्चन वगैरह वगैरह. मैंने आई एम नॉट अ वेरी डेस्परेट सेल्स पर्सन, आई एम नॉट वेरी डेस्परेट सेल्स पर्सन. आई सेल होम्स, आई बाय होम्स, बट आई एम नॉट डेस्परेट वन कि मैं तुमको फंसाने के लिए. आज भी मुझे घर खरीदने की कॉल आई, मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है जिन्होंने मुझे कॉल किया, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करे. मगर अच्छा फिर उसमें ये होता है कि जब आपने घर लेना है, से आई ऑलवेज से कि यू हैव टू हैव 20%. आप इसको मेरा नेगेटिव समझ लें, आप इसको मेरा बेहतर समझ लें, क्योंकि आप 10% के ऊपर भी मॉर्गेज हो जाएगी अगर आपकी जॉब अच्छी है, तो आप इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा पे करेंगे, नंबर वन. नंबर टू, आप CMHC की फीस भी ज्यादा पे करेंगे. एंड नंबर थ्री, जब ये सारा हो जाता है तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट ज्यादा होगी. जिस बंदे का, किसी ने उनको कहा कि आपने जो घर लेना है, आप समझिएगा $40,000 आपका क्लोजिंग पे आएगा. $1,000,000 के ऊपर, पहले 5 लाख के ऊपर एक और होता है, फिर अगले 5 लाख के ऊपर डिफरेंट प्राइस है. आपको 1.5% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स, क्या है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर आपको देना पड़ता है 1.5% के. सो अगर आपने मिलियन का घर लेना है तो यू हैव टू हैव अराउंड 18,000 to 19,000, 1.5 से 2,000, 2,500 वकील की फीस आप समझ लें, प्लस 1.5%, 3,000 से 5,000 आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए कि घर लेने के बाद अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आ जाए तो यू शुड, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं और अपनी मैप के साथ चल रहे हैं, घर ऐसा लीजिएगा जिसकी बेसमेंट बनी हुई हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन रेंट इट अलोंग विद विच कैन पे यू एक्स्ट्रा. अभी इंटरेस्ट रेट्स जो चेंज आना है, वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, लेट्स सी. ख्याल तो यही किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट निस्बतन कम होंगे. इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो यकीन घर खरीदने वालों की तादाद में भी इजाफा होगा. अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या घर बेचना चाहते हैं, घर बेचने के लिए वी मेक आर कंपैरेटिव मार्केट, घर खरीदने के लिए भी अक्सर घर 799 के आ जाते हैं और एक बंदा आपको कहता है जस्ट टू गेट योर सिग्नेचर्स कि मेरे साथ आप साइन कर लें, बाद में फिर जो होएगा बाज भुगत लवांगे. मगर सर जो 799 का घर लगा हुआ है, आपको वो एग्जैक्टली 799 का नहीं मिलेगा अगर वो अच्छी कंडीशन में. इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ द हाउस एज वेल. देयर इज कंपैरेटिव मार्केट जिसमें आपको अक्सर घर जो 799 के बिके हैं वो 950, 930, 990, 9 लाख के बिके हैं. 1 लाख से 1.5 लाख ज्यादा के बिकते हैं क्योंकि वो सिर्फ दिखावे की कीमत लगी है. और जो 899 का है वो मिलियन से 11 लाख के दरमियान बिकता है. दिस इज व्हाट द मार्केट शोज. वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर यू. मेरा नाम आरफा मुजफ्फर, सिटीस्केप के साथ मेरा ताल्लुक है 6478986245, 8986245 मेरा नंबर है. ठीक, तो देखते रहे Top of the Hour. We'll come back with Shazia Malik.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900.
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जांदा. सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज.
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171.
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक यू 5196220660 quicktrucklube.com।
हमारा मंसूबा ओंटारियो को कनेक्ट कर रहा है। हम रोजाना के सफर को कम करने के लिए नई सड़कों और हाईवेज की तामीर कर रहे हैं और बढ़ते हुए इलाकों को मुंसलिक करने के लिए अवामी ट्रांजिट को वसत दे रहे हैं ताकि आपका सफर तेज, महफूज और आसान हो। मजीद मालूमात ontario.ca/builds पर मौजूद हैं। इसकी अदायगी ओंटेरियो की हुकूमत की जानिब से की गई है।
ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब आरएस वालिया।
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
फेल टू रिमेन स्टॉप एट द सीट,
रेड लाइट या फिर सीट बेल्ट,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस,
रेसिंग, स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट व्हाइल यूजिंग फोन,
स्पीडिंग,
आरएस वालिया आपकी टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे। 9054542112
फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज या फिर होवे लोन, सोचो ना बस बिल्कुल भी, होने मिलाओ फोन।
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काकदा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000
लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
अकाल 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 मॉर्गेजेस।
जी साहब, नाजरी वेलकम बैक अगेन। एंड साहब, 6:12 और 44 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं। 24 डिग्री टेम्परेचर, ब्यूटिफुल मंडे का दिन एंड May 27th। यस, यू हर्ड इट राइट, May 27th। भागा चला जा रहा है साल, मई का महीना आ गया, अब जून 6 महीने हो गए साहब। न्यूज सुनना जा, अच्छा न्यूज सुनाएंगे आपको। न्यूज शाहजा मलिक आ गई, यहां पर बैठ गई हैं और मैंने देखा है वो साथ एक ट्यूब लेके आई थी, मेरा ख्याल है वो उसका होता है ना, वो गोंद का गोंद वोंद लगा के बैठी हुई है अपने आराम से। वो हिल नहीं सकती, अगर आप उनको देखेंगे एक ही जगह बैठी हुई है और हिल नहीं रही है, तो इसका मतलब वो गोंद लगाया हुआ है उन्होंने। एनी वे, दिस पोर्शन ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा। डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पर होती हैं। इनका कहना है कि फैमिली ब्रेसेस, कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम। New and emergency patients are always welcome and comprehensive dental care, morning, evening, weekends and same day emergency appointments मिल सकते हैं आपको। Direct billing to insurance and easy payment options उनके पास है। Dr. नाजिया रहमान, दो location, दोनों location Brampton के इलाके में। 9058721100 Dr. नाजिया रहमान का फोन नंबर है। हाँ साहब, कहते हैं हर जगह जहां भी जाएं आपको, लोग पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, वो रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं और उसमें से एक ही रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, विच इज ओपन माइक कैफे। ये कहते हैं नासिर शाह साहब, ओपन माइक कैफे आपको मिलेगा 1310 1310 डंडास स्ट्रीट, डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर आपको मिलेगा। 4165266800 ओपन माइक कैफे का फोन नंबर है। ईस्टर्न के इलाके में तो, और ग्रोसरी चाहिए, ग्रोसरी जरूर चाहिए आपको, तो आप पहुंच जाइए कहां पर, बटाला सुपरमार्केट पर। बटाला सुपरमार्केट आपको मिलती है 200 क्या है वो मार्कम। थैंक यू सो मच शादी जी मेरी हेल्प करने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप भी मेरे पीछे खड़े होती तो सही था, मगर नहीं है, परवाह नहीं है मुझे, मैं अकेला ही थोड़ा सा हिलजुल के निकाल लूंगा मैं। तो कहां जाना है आपने, बटाला सुपरमार्केट
416-264-3111
बटाला सुपरमार्केट का फोन नंबर है 416-264-3111। हां, ईद उल अजहा की आमद है और मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर GTHA में अगर आपने कुर्बानी करनी हो तो साहब आप कुर्बानी का तीसरा हिस्सा जिसका आप पे कोई हक नहीं है, आपने देना ही देना है नीडी लोगों को, तो वो हिस्सा जो है आप मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा को दे सकते हैं। और अगर आपने पाकिस्तान में कुर्बानी करनी हो तो साहब आप पाकिस्तान में $105 का एक काव का हिस्सा मिलेगा, 7 काव के हिस्से होते हैं ना, तो उसमें से एक हिस्सा आपने लेना होगा, तो $105 का। और आपने गोट करवानी हो पूरी की पूरी तो $200 में आपको गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। आपके बिहाफ पे ये पाकिस्तान में करेंगे और नीरी लोगों तक आपका कुर्बानी का गोश्त जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। www.mwcanada.ca इनका वेबसाइट है, और अगर आप यहां चले जाएं mwcanada.org पर चले जाएं, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा, मैं यहां बातें कर रहा था और शाहजा जी जो है वो बड़ा बोर लगा तो वो सो गई, थोड़ा सा आराम कर रही है, मैं जरा हिला के उनको जरा जगा दूं क्योंकि वो बड़ी गहरी नींद सो रही है अभी। शाहजा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम सलाम। यानी मजद भाई 10 मिनट से आप और अरफाबाजी बातें कर रहे हो, और 10 मिनट से आप अपनी वो कहानियां सुना रहे हो।
हाँ जी,
और कह मुझे रहे हो कि मैं सो रही हूँ, मतलब पिछले 20 मिनट से आप और अरफाबाजी बातें कर रहे हैं।
आपको बैठ के जरा ध्यान से समय सुने, मगर इंस्टेंट मैं देख रहा हूँ आपको, उसको कहते ना टेढ़ी आंख, टेढ़ी आंख से मैं आपको देख रहा हूँ। जब भी मैं देखा आपकी आंखें बंद है, या तो मैं बड़े सुर में गवा रहा था, या तो मैं
नहीं, आप दोनों की बातें होती इतनी बोरिंग के बंदा सो जाता है ना,
या तो मैं इतनी सुर में ये सारे एड सुना रहा था।
अच्छा अच्छा,
आप समझ रहे मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना नहीं गा रहा था।
अच्छा अच्छा अच्छा,
मैं एड सुना रहा था कमर्शियल्स।
ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं जरा वो जो है ना वो खाने का एंजॉय का मजा ले रही थी। वो असल में दो बंदे गए ना, एक गोरा गया था, एक सारा पंजाबी गया जी उधर, वो जो है लाहौर का विलेज रेस्टोरेंट।
हाँ जी,
तो उधर गया तो वो उसको कहता है कि उन्होंने आया वो बैरा पूछने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, तो वो उसको कहता है
बैरा मीन डेफ,
हाँ डेफ, यानी डेफ आया ना उसको ऑर्डर लेने के लिए। तो वो उसने पहले तो गोरा साहब को पूछा, गोरा साहब ने कर्टसी में कहा कि नहीं नहीं माय पाकिस्तानी फ्रेंड विल फर्स्ट गिव द ऑर्डर। तो वो उसने जब पाकिस्तानी फ्रेंड की तरह उन्होंने कहा जी साहब की लेके, कहने यार एक दाल लिया जरा है ना खालस घी का तड़का मार के, खालस घी ना आए मक्खन का तड़का मार के लेके आ, फिर लेके आ उसने नाल पराठे गरम गरम है उन्होंने उत्ते ढेर सारा वाइट मक्खन लिया।
ओ
ठीक है,
हाँ क्या बात है,
निहारी जड़ी लेके आएगा उसके विच नलिया होन है, तो वो लेके आ, और जरा है वे ओ लेके आना है तू लस्सी जिस दे उत्ते होवे बहुत सारा ना वो, हाँ बहुत सारा ओ मक्खन आया होवे उससे भी अगे, और चाय उसके बाद जड़ी तू लेनी है मलाई मार के लेके आनी।
हाँ जी।
अच्छा
जी,
तो फिर वो गोरा साहब के पास गया, कहते सर हुन तुसी ऑर्डर दे दियो, कहते यार मेरा ऑर्डर रहन दे मेरे वास्ते भी यही लाया मेरा कोई अंग्रेजी खड़ा इतना कोई बदजायक और बदशकल होगा तू है मेरे वास्ते नहीं तू यही लाया। वो जैसे याद है वो एक वजह था, वो दो लोग थे अपनी बीवी को ढूंढने निकले थे।
अच्छा।
तो वो पुलिस वाले ने पूछा, उसने कहा हाँ जी बताएं आप अपनी बीवी की डिस्क्रिप्शन, तो कहता है यार मेरी बीवी पुलिस साहब जो है ना गोरी चिट्टी नीली आंखों वाली पतली दुबली और उसके हाथ में जो है बड़ी प्यारी प्यारी वो चूड़ियां हैं और लाल जोड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा लिख लिया। दूसरे ने कहा हूं तुम दसो
मेरी आरी को छोड़ दे
किसी को ढूंढने। उसी तरह वो गोरा साहब ने कहा यार मेरा खाना छोड़ ये लाहौरी का खाना खा। तो मोहित भाई ये चल रहा है हमारे मासूम लोगों के साथ है
दादाजी।
हाँ और फिर भी ये पाकिस्तान का बहुत नाइंसाफी और फिर भी पाकिस्तान को बातें सुनाते हैं। हमारे जैसा मजे का खाना तो जरा बना के बताओ है। ये नली निहारी जरा बना के दिखाओ हमें है। जैसे मैं अपनी जो है वो डॉक्टर के पास जाती हूँ इतनी सी जो है पितली सी तो मुझे कहती है तुम बहुत मोटी होगी हो। मैंने कहा जरा नली निहारी पे मैं तुम्हें लगाती हूँ और तिल वाले नानों पे लगाती हूँ मैं तुम्हें फिर देखेंगे तुम कैसे इतनी सी रह जाओगी।
कहता है एक हफ्ते के लिए मेरे घर पे विजिट पे आओ।
हाँ विजिट पे आओ तुम्हें जरा वो बिरयानियां शिरयानियां खिलाएं
अपना खाना खिलाएं
अपना खाना खिलाएं ताकि तुम भी जरा सेहत पकड़ो।
हाँ जी
है तो ऐसे है। अच्छा जी दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय मलिक लॉ ऑफिस। मलिक लॉ ऑफिस वाले कहते हैं जी कि माजिद भाई तो इसमें से एक ही चीज पढ़ते हैं डिवोर्स इश्यूज। नहीं सिर्फ ये इश्यूज नहीं है सॉल्व करते
और भी है
और भी इश्यूज हैं जो ये सॉल्व करते हैं। जिस वे बंदे की चाली साल शादी हो जाए ना फिर माजिद भाई वाला हाल होता है। तो तुम प्लीज इतना लंबा तुम्हें गुजारने की जरूरत नहीं है। माजिद भाई से ज्यादा इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी तो मलिक लॉ ऑफिस के पास जाएं और मलिक लॉ ऑफिस बिल्कुल आपका हर तरह के इस तरह के मामलात में हेल्प करेगा। मोहम्मद अतीक मलिक साहब होते हैं। इनका नंबर है 9052914455 एंड जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल जिसमें 1400 प्लस टाई बंदा बुला सकते हैं। आपको आपका कोई कॉर्पोरेट इवेंट करना है या फैमिली का इवेंट करना है तो प्लीज आप जरूर इनसे संपर्क करें। बड़ी जबरदस्त जगह पे ये लोकेटेड है 2935 ड्रीव रोड मिसेस सागा में और बहुत जबरदस्त इनके खाने हैं इनके जो बैंक्वेट हॉल्स हैं। तो आप इनको जो है जरूर कंटेक्ट करें। तो इनका कंटेक्ट नंबर जो है वो 6479653823 है। हाँ जी अच्छा जनाब आज जो ट्रूडो साहब है ना जी वो पहुंचे हुए थे नोवा स्कोशिया में। तो नोवा स्कोशिया से जो है वो लोगों ने उनसे पूछा जी अभी आप अमेरिका गए थे बड़ी आपकी वहां पे इज्जत अफजाई की गई है फिर से बहुत इज्जत आपकी की गई है और लोगों ने वहां पे कहा
याद दिलाया
बस याद बड़े खराब लोग हैं ना याद कराते रहते हैं इंडिया में आपकी इज्जत अफजाई हुई तो अब अमेरिका में हुई। लोग बहुत खराब हो गए हमारे बैड कंपनी। बहरहाल जी लोगों ने कहा जी अभी आप अमरीका गए थे आपकी बड़ी इज्जत अफजाई की गई है और आपको कहा गया कि नेटो का जो डिफेंस जो बजट का टारगेट है आपको लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अमरीका में एक भी नहीं दो भी नहीं तीन भी नहीं 23 यूएस सेनेटर्स एंड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द लाइन डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स उन्होंने कहा जी कि कनाडा जो है नेटो के बिल्कुल टारगेट्स जो है उनको पूरा नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर आज कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे ट्रूडो साहब वो बात कर रहे थे कि हम बिल्कुल समझते हैं कि कनाडा की भी डिफेंस नीड्स हैं और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो मेन और वुमेन जो है हमारे आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं उनको हमको बिल्कुल राइट इक्विपमेंट देना है और हमें यह भी पता है कि हमारे एलाइज जो है वो समझते हैं कि हम अपने जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं जो है सारी चीजें लेकिन हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं और बिल्कुल जो है ये हम इसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि आपके जीडीपी का 3% इज नॉट रियली अ स्मॉल अमाउंट और जो 32 मेंबर नेटो की जो 75th ऑफ एनिवर्सरी है उसके ऊपर ये चीज ज्यादा अब जोर पकड़ती जा रही है क्योंकि अब जो प्रेशर है वो ट्रूडो साहब के पास बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि 18 जो नेशंस हैं 32 मेंबर नेटो जो अलायंस है उसमें से उन्होंने ऑलरेडी अपने टारगेट्स जो हैं कुछ मीट कर लिए हुए और कुछ ने कहा कि बाय दिस ईयर एंड हम जो है वो कर लेंगे। तो इसलिए होले होले बाकी के भी जो हैं वो कर रहे हैं लेकिन कनाडा अभी तक नहीं कर पा रहा है। तो उसी सिलसिले में आज इनके साथ जो थी वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी नहीं हम इसको देख रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़
ये तो
है
ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो हमारे अंकल हैं नेबर हैं हमारे।
हाँ हाँ अंकल सैम
तो हम पे आप इतना वो कर रहे शक्ति कर रहे हैं
अंकल सैम नहीं तो इनका जो है वो इनका इनको चूंटी काटी हुई है इनको मरोड़ा इनका
हम तो जहाज नहीं लेते हम पानी का जहाज नहीं लेते हम ये नहीं करते क्यों क्योंकि हमको पता है कि हम पे जिसने अटैक किया है
हाँ, हाँ,
आप सामने आ जाओगे, इसलिए हाँ, कोई अटैक ही नहीं करता हम
हाँ, करता ही नहीं है तो हम अपना क्यों बढ़ाएंगे। हूं देखो ना मजिद भाई, थोड़े मेरे जो बंदा कोई उत्थे बैठे हुआ ना सियाणा किस्म का साड़ी तरह का, तो इस तरह की सियाणी बातें करेगा। ट्रूडो साहब तो मासूम है, उनसे ऐसी बातें अमरीका
ने सॉरी कर दिया।
हाँ उन्होंने सॉरी कर दिया। अच्छा जनाब, आज कैनेडा ने बहुत बड़ी खबर जो है वो अनाउंस की है, जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले आपको पता ही है कि कहा था कि हम गाजा से तकरीबन 1000 टेम्पररी रेजिडेंट वीजा पे लोगों को लेकर आएंगे, जिनकी के फैमिली जो है वो यहां पे रहती है, अंडर अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर कैनेडियन रिलेटिव। आज उन्होंने अनाउंस किया है कि नहीं, हम 5000 गाजा रेजिडेंट्स को वीजे देने के लिए तैयार हैं, अगेन अंडर दिस स्पेशल प्रोग्राम फॉर कैनेडियन रिलेटिव्स, और उनको यहां पे लाया जाए। उन्होंने कहा जी, पहले एक दफा जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा जी गाजा के अंदर कंडीशन बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, उनको लाया नहीं जा सकता क्योंकि इसके अप्रूवल्स जो है कॉन्स्टेंटली इसराइल से लेने पड़ते हैं, और जो कुछ लोगों को जो ये लेकर आए थे जिसका के नंबर इन्होंने रिवील नहीं किया था, उसके बारे में इन्होंने कहा था जी कि ये इसकी अप्रूवल जो है इसराइल ने भी दी है, ये जो सारा हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की थी, और इजिप्ट जो है उसने भी बड़ा की रोल इसमें प्ले किया था। तो अब हम कह रहे हैं कि जब भी, अभी भी उन्होंने कहा जी कि वहां से लोगों को लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी कभी मौका मिले तो हम 5000 लोगों के लिए खोलेंगे अपने दरवाजे, यानी कि 1000 जब पहले अनाउंस किया था और 4000 अब, तो ऑल टुगेदर 5000 जो है लोग यहां पर आ सकते हैं। ऑन्टेरियो के जो इन्फॉर्मेशन एंड प्रिवेसी कमिश्नर हैं पेट्रिशिया कासम, उन्होंने कहा जी कि मैं वो तमाम की तमाम ईमेलें जो शायद गायब करने की कोशिश की गई थी, या कि सारे जो मैसेजेस थे जिनको डिलीट कर दिया गया था विच वर रिलेटेड टू द ग्रीन बेल्ट, उनके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट मैं तैयार करके मैं जल्द ही जो दूंगी। इसकी बात उन्होंने उस वक्त की जिस वक्त एनडीपी की जो लीडर हैं मैरिट स्टाइल्स, उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रीमियर साहब और उनकी गवर्नमेंट के जो स्टाफ के मेंबर्स हैं जो इनके पर्सनल फोन्स और ईमेल्स और जो चीजें डिलीट कर दी हैं उन सबके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर आपको पता ही है के लेट 2022 में डकफोर्ड साहब की जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ ग्रीन एरिया ले लिया था ग्रीन बेल्ट का, और कहा था कि यहां पे हम हाउसिंग का जो क्रंच है उसको खत्म करने के लिए उस पर हाउसेज बनाएंगे, जिसमें कि ये पूरे का पूरा स्कैंडल आया था कि शायद कुछ जो हैं बिल्डर्स उनको फेवर देने की कोशिश की गई, और फिर ये सारे का सारा केस आरसीएमपी को दे दिया था करने के लिए इन्वेस्टिगेट, उसी के ऊपर ये बात कर रही थी। और उन्होंने कहा जी कि जो है हम इसके ऊपर रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीपी ने बहुत जोर दिया था कि पता होना चाहिए कि जो है ये सारा कुछ ईमेल्स के अंदर क्या लिखा जा रहा था और क्या हो रहा था और क्या कम्युनिकेशन जो है वो हो
रहा है। मेजोरिटी गवर्नमेंट,
हाँ जी हाँ जी,
मेजोरिटी गवर्नमेंट जब होती है आपकी तो आप यू कैन डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे आर एंजॉइंग देयर मेजोरिटी।
एग्जैक्टली, तो बहरहाल जी उन्होंने बताया तो नहीं है कैसम साहिबा ने कि किस वक्त ये रिपोर्ट आएगी, बहरहाल उन्होंने कहा कि स्पेशल रिपोर्ट हम जरूर लाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर जी मसले जो हैं वो काफी ज्यादा भड़क गए हैं, आपको पता ही है वहां पे एनकैंपमेंट हुई हुई है प्रो पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके, वीकेंड के ऊपर सैटरडे और संडे को ये इनकी आपस में बात होती रही है, इवन फ्राइडे से ये बातचीत जो स्टूडेंट्स हैं उनके और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में चल रहे थे, और फिर इन्होंने कहा कि नहीं हमको तो यहां पर बुलाना पड़ेगा, पुलिस बुलानी पड़ेगी इनको यहां से हटाने के लिए। जो इनकी प्रेसिडेंट है मर्सियर गंटियर, उन्होंने कहा जी कि अब तो हम कोर्ट का इंजंक्शन लेने लगे हैं क्योंकि ये लोग यहां से हट नहीं रहे हैं। अब इसके ऊपर जो स्टूडेंट यूनियन है वो बड़ी हैरान हुई है, कहते हैं जी जब हमसे बात कर रहे थे तो हमको कह रहे थे कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमको आके ये स्टोरी बताई है, फिर कैंपस के ऊपर पुलिस बुला ली है, और अब जो है कोर्ट इंजंक्शन कर रहे हैं, वीकेंड के ऊपर हमसे जो है बातचीत करते रहे हैं, तो ये अब समझ नहीं आ रही कि जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या चाह रही है। लेकिन इसके बीच में स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है, ये जो एनकैंपमेंट स्टूडेंट्स हैं इन्होंने ये भी कहा है कि हमने इनसे कहा था कि उन तमाम कंपनियों के नाम आप हमें बताओ जो कि इन इन्वेस्टमेंट्स यहां पे कर रहे हैं और जिनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो जा रही हैं बेनिफिट कर रही हैं उनको वॉर अगेंस्ट गाजा, तो क्या उन लोगों का कोई इंटरेस्ट है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आपको कोई फंडिंग दे रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए और आप बिल्कुल जो है उससे अपने आप को डिसोसिएट करें। तो अब ये तो खैर यूनिवर्सिटियों के लिए पॉसिबल नहीं होता, यूनिवर्सिटियां डोनेशंस पे ही चलती हैं ज्यादातर, तो अब ये चीजें मगर बहुत ज्यादा जो है भड़क गई हैं, तो अब देखेंगे ये क्या जनाब होता है, क्योंकि इनको फ्राइडे को ही कहा था एडमिनिस्ट्रेशन ने कि 8 बजे तक आप अपने सारे जो हैं वो हटा लें यहां से, ये जो कैंप्स आपने लगाए हुए हैं इनका, जो किंग्स कॉलेज का जो सर्कल का कैंपस था उसके अंदर से, लेकिन स्टूडेंट्स वहां से मूव नहीं किए। पील रीजनल पुलिस जो है उसने आज 16 सस्पेक्ट्स जो हैं उनको पकड़ा है, उनको कायजी के जो 10 और हैं उनके खिलाफ हमने अरेस्ट वारंट्स दिए हैं। ये सारी की सारी जो ऑटो थेफ्ट की इन्वेस्टिगेशन एक बुटाई थी उस सिलसिले में ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही हाईली ऑर्केस्ट्रेटेड क्रिमिनल ऑपरेशन जो था वो ये चल रहा था। आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी पील पुलिस और उन्होंने कहा जी कि अंडर प्रोजेक्ट ऑडिसी जो कि हमने शुरू किया हुआ था अक्टूबर 2023 में, जिसमें के सैकड़ों ही स्टोलन कार्स जो थी वो इन्वॉल्व थी जिनको के बाहर भेजा जाता था, और इसके अंदर उन्होंने कहा जी के जो हैं ये बहुत सारे जो थे लड़के, यानी कि 14 के करीब जो थे इनको आइडेंटिफाई तो किया गया था, बट दे वर ऑन सम फॉर्म ऑफ रिलीज, दे वर आउट ऑन सम फॉर्म ऑफ रिलीज या के बेल पे थे ये बाहर। ऑटो थेफ्ट रिलेटेड ऑफेंसेज में 322 चार्जेस जो थे पुलिस ने लगाए थे, 369 स्टोलन व्हीकल्स इंक्लूडिंग 2 ट्रांसपोर्ट ट्रक्स जो थे वो इन्होंने सीज किए थे, और इनकी कंबाइंड वैल्यू जो थी $33.2 million थी। 255 कार्स जो थी वो रिकवर की थी पील पुलिस ने, 114 जो है पील पुलिस ने पील से रिकवर की थी, और 114 जो थी वो पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल से इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था जी कि एक कंपनी हमने, एक लोकल कंपनी जो है उसको हमने आइडेंटिफाई किया जो कि ये सारे की सारी फैसिलिटेट कर रही थी शिपमेंट टू मॉन्ट्रियल, और फिर वहां से जो है ये यूएई और ओमान लेके जा रहे थे। ये जो वो कहते हैं जी कि ये जो लोकल इंटर मॉडल हब्स थे इन जीटीए, और उधर से ये जो सारी गाड़ियां थी उठाई जाती थी और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था 401 कॉरिडोर टू मॉन्ट्रियल, और बहुत सारे इसमें से जो गाड़ियां थी वो बड़े जो वायलेंट कार जैकिंग के इंसिडेंट थे उसके अंदर भी इन्वॉल्व थी। तो लग रहा है कि हौले हौले जो है पील पुलिस जो है काम कर रही है।
ये भी कहा ना कि 3000 गाड़ियां लास्ट ईयर हमने रिकवर की थी, एंड दिस इज ओनली इन पील, यू नो ये जरम पील या वो टोरंटो वगैरह नहीं है, ये ओनली इन पील 3000 कार्स वर रिकवर्ड लास्ट ईयर, एंड इस दफा अभी देखिए कितने सारे उन्होंने किए। अब इनको अगर वो सिर्फ चाह रहे हैं किस तरह हम इनको बड़े बड़े ग्रो जो है वो उनको पकड़े,
क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो है
ऑर्गेनाइजेशन,
ये छोटे मोटे बंदे नहीं।
और इसमें भी इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो इनकी बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी है इनकी,
जी 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 बहुत
बड़ी, दो बड़े जो ट्रांसपोर्ट ट्रक्स थे उनको और उसके साथ साथ इतनी गाड़ियों को उन्होंने किया है, 32-33 मिलियन डॉलर्स की गाड़ियां, इट इज अ हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम,
बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा जनाब, सीएनएन की खबर थी और उसके मुताबिक जो पेपुआ न्यू गिनी है वहां पे लैंडस्लाइड्स ऐसी आई हैं कि 2000 लोग जो हैं दे वर बेरिड अलाइव अंडर दोज लैंडस्लाइड्स। अब ये जो है ये इलाका बड़ा ही मुश्किल है, ये काउकैलम विलेज है इन एंगा प्रोविंस, और वो कहते हैं जी कि ये पूरे का पूरा फ्लैट हो गया है, और यहां पे पहले इन्होंने कहा था जी कि कोई तकरीबन 100 के करीब लोगों की डेथ हुई है, लेकिन बाद में पता चला जी कि पूरे का जो एक टाउन सा था छोटा सा दैट वॉज वॉश्ड अवे, और वो कहते हैं जी कि इसके अलावा भी बेतहाशा यहां पे डिस्ट्रक्शन आई है, गार्डन्स और बिल्डिंग्स उनको मैसिव डैमेज मिला है, और 4000 के करीब लोग जो हैं यहां पे आसपास के 6 जो विलेजेस थे वहां पे रह रहे थे जिनको के जो है इसने लैंडस्लाइड्स ने अफेक्ट किया है। 3 दिन गुजर गए और अभी तक जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है, कुछ पता नहीं है कि उनके नीचे अब जो लोग फंसे हुए हैं वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज का कहना है कि सैकड़ों ही लोग जो है फंसे हुए हैं एरियाज में, हाँ कंप्लीट वाइप आउट हो गया, और बहुत ही मुश्किल है अब 3 दिन गुजरने के बाद कि कोई अगर वहां पे उनको जिंदा मिल सकता है। इसके साथ साथ जी म्यांमार का जो रकीन स्टेट है वहां पे वायलेंस बेतहाशा बढ़ गई है, और बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा पैलेस्टाइन में चल रहा है कि बिल्कुल एथनिक क्लेंजिंग ये भी रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं उनकी कर रहे हैं। 45,000 के करीब जो हैं ये लोग भाग भाग के यहां पे बांग्लादेश और ये जो नैफ रिवर का एरिया है बांग्ला बॉर्डर पे वहां पे आ रहे हैं, क्योंकि अब तो ये पता चला है और यूनाइटेड नेशंस की जो आज प्रेस रिलीज आई है उसके मुताबिक ये एलिगेशन सामने आए हैं कि जो म्यांमार के अंदर ये लोग हैं ये बी हेडिंग्स कर रहे हैं अब इनकी, इनको मार रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो है उसको जला रहे हैं। ये क्लैशेस जो हैं ये रकीन के अंदर उस वक्त से शुरू हुए हैं जब से अरकान आर्मी के जो रेबल्स हैं वो अटैक कर रहे हैं रूलिंग जो मिलिट्री गवर्नमेंट जो आई थी नवंबर में उसके साथ, और कोई भी सीज फायर यहां पे नहीं हो रहा है। हालांकि उससे पहले जो है सीज फायर का अनाउंसमेंट किया गया था जो कू हुआ था उसमें मिलिट्री का 2021 में, लेकिन वो अब खत्म हो गया और उसके बाद ये मारधाड़ फिर से शुरू हो गई है। मुस्लिम यहां पे माइनॉरिटी रहती है और इसके अलावा जो है मेजॉरिटी बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिस्ट जो है मुसलमानों को आउटसाइडर्स कहते हैं और वो कहते हैं कि हालांकि अदरवाइज आपने सुना होगा कि बुद्धिस्ट बड़े ही पीस लविंग है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये मुसलमान जो है ये म्यांमार के अंदर रहें। और ये जो है ए यानी कि ये जो अरकान आर्मी के जो रेबल्स हैं ये जी कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं यहां पे। इससे पहले भी 600,000 रोहिंग्या जो थे उनको जब कहा गया था कि तुम छोड़ के जाओ तो उन्होंने कहा नहीं कि जो म्यांमार है वो हमारा मुल्क है और हम यहीं पे रहना चाहते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि कुछ अरसा पहले लाखों की तादाद में ये लोग बांग्लादेश गए थे क्योंकि बेसिकली ये बांग्लादेश से ही यहां पे गए हुए हैं और यूनाइटेड नेशंस ने बांग्लादेश को कहा था कि ये आप जो है इन लोगों को एब्जॉर्ब करें। यहां पे 2017 के अंदर एक मिलिट्री क्रैकडाउन जो हुआ था जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा था ये मिलिट्री का क्रैकडाउन नहीं है, ये जीनोसाइड का केस है जो कि अभी भी यूनाइटेड नेशंस की जो कोर्ट है उसके अंदर है। मगर ये जो अब फ्रेश लड़ाइयां हुई हैं उससे अब थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं और डिस्प्लेस हो गए हैं। बुथी डोंग और मनुक डॉ का जो एरिया है वहां पे म्यांमार में वहां पे, तो ये जनाब बड़ी ही खतरनाक जो है वो सूरत हाल है। बड़े ही पावरफुल टॉर्नेडोज और स्टॉर्म्स जिनका जिक्र अभी माजिद भाई भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे वो अमेरिका में आए हैं, और अमेरिका के तो सही मानों में अगर वो जो आपने उर्दू का मुहावरा शुरू होएगा ना परखचे उड़ने, तो परखचे उड़ते हुए आपको वहां पे घरों के और गाड़ियां और दरख्त जो है जैसे अपरूट हुए हैं वो आपको वहां पे अमरीका में नजर आए होंगे। अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आई हैं तो गवर्नमेंट की वो तो कहते हैं जी 11 लोगों की डेथ हुई है, बट पीपल डाउट इट वेरी मच, जिसमें कि वो कहते हैं जी के दो किड्स भी हैं। जिस तरह का ये तूफान था लगता नहीं है कि 11 से बहुत ज्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ्स हुई होंगी इन टेक्सास, ओक्लाहोमा एंड आर्कनसा। यहां पे जो खास तौर पे कुक काउंटी है टेक्सास के अंदर उसके अंदर 7 डेथ्स की रिपोर्ट्स आई हैं, और घर उड़ते हुए और दरख्त उड़ते हुए और गिरते हुए यहां पे नजर आए, लोगों की गाड़ियां बेतहाशा नुकसान हुई हैं जब दरख्त उनके ऊपर गिरे हैं। ओक्लाहोमा में कहा गया है कि जी जो मायर्स काउंटी है वहां पे 2 लोगों की डेथ हुई है, आर्कनसा के अंदर भी 2 लोगों की डेथ हुई है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को हॉस्पिटल्स में लेके गए और यहां पे जो थे एयर एम्बुलेंसेज जो थी वो देखी गई थी खासतौर पर डेंटन काउंटी टेक्सास के अंदर, और वहां पे लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा था। ओक्लाहोमा के अंदर तो एक आउटसाइड वेडिंग हो रही थी और उसमें तो देखा गया कि चीजें उड़ उड़ के जा रही हैं, वो जो टेबल और कुर्सियां उड़ी उससे लोगों की काफी जख्मी वहां पे लोग हुए। 375,000 जो थे वो विदाउट पावर थे इन टेक्सास, मिजूरी, ओक्लाहोमा, कैंसस और आर्कनसा के अंदर एज ऑफ यस्टरडे। अप्रैल और मई जो हैं बहुत ही खतरनाक महीने अमेरिका के लिए इस दफा रहे हैं कि बेशुमार टॉर्नेडोज यहां पे आए हैं खासतौर पर मिड वेस्ट में। आयोवा जो था वो भी उसमें भी लास्ट वीक बेतहाशा डेडली किस्म के ट्विस्टर्स और ये टॉर्नेडोज आए थे। इसके अलावा जो है वो कहते हैं जी के फ्लडिंग है और बहुत ज्यादा डैमेजिंग एयर्स जो हैं वो भी यहां पे चल रही हैं। ते पायन फिर अल्लाह ताला ने कुछ ते तुहानू अमरीकियां नू दिखाना ना जो तुसी दुनिया दे विच जुल्म उठाया होया, एक ऑक्यूपायर है उसके साथ आप खड़े हुए हैं, वो कॉन्स्टेंटली जुल्म कर रहा है, इंसानों को मार रहा है, ना तो अब आपको ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं ना कोई आप कंपैशन दिखा रहे हैं। वैसे आप कहते हैं जी हमारे बड़े अमेरिकन वैल्यूज हैं, वो अमेरिकन वैल्यूज अभी तक नजर आए नहीं है वैसे बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो शायद कोई थोड़े दिनों में और मुसलमान अगर बेचारे और कोई 10-12-15-20,000 जब पैलेस्टीनियंस मर जाएंगे शायद आपको ह्यूमन राइट्स उस वक्त याद आ जाए। बहरहाल एक पूरी नस्ल जो है वो तो जीनोसाइड उनकी कर चुके हैं, बिल्कुल एथनिक क्लेंजिंग इसको बोला जाता है जो कि इसराइल जो है वो कर चुका है पैलेस्टाइन के अंदर। सो शेम ऑन यू, तो अल्लाह ने फिर आपको कुछ तो दिखाना ही है ना अंकल सैम। ऐसे एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज है जी, और एसोसिएटेड प्रेस की इस न्यूज के मुताबिक यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये भी हमारे जो है टोरंटो के मेयर बने हुए हैं जो थे ना हमारे पहले टोरी साहब वो बने हुए हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं गए होते हैं मांगने के लिए। आज जनाब ये स्पेन में पहुंचे हुए थे और स्पेन के अंदर इन्होंने कहा जी कि हमको एयर डिफेंस मिसल्स जो हैं वो आप दें टू फाइट 3,000 बॉम्ब्स रशिया लॉन्चेज एवरी सिंगल मंथ. कैन यू इमेजिन, आप सोचें, आपके तीन साल से ये जंग जारी है और ये कह रहा है कि हर मंथ 3000 बॉम्ब्स जो है रशिया लॉन्च करता है. अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो पता नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो आप सोचें कि रशिया के पास कितने बॉम्ब्स हैं जो कि अभी तक खत्म नहीं हो रहे हैं. इन्होंने आज स्पेन से कहा जी कि यूएस मेड पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तरह का हमको अर्जेंटली सिस्टम चाहिए ताकि हम अपने सिविलियंस जो है उनको बचा सके. ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मैड्रिड में जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हमको इतना चाहिए. तो जाहिर है कि स्पेन जो है वो तो एकदम से भड़क गया इनकी बात सुन के और उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल साढ़े को तो पैसा ही बड़ा है, ले लो साढ़े को और पैसा ले लो. तो स्पेन ने आज फिर से प्लेज किया है, न सिर्फ ये कि मिलिट्री इक्विपमेंट देंगे बल्कि 1.08 बिलियन यूएस डॉलर्स दिस ईयर अगेन. और इनके बीच में अब ये साइन एक डील साइन हुई है जिसके अंदर इनको ये सारी जो है वो दी जाएंगी चीजें, मिलिट्री इक्विपमेंट भी और ये पैसे भी सारे. ज़ेलेंस्की साहब और ये जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेस, इनके बीच में आज ये डील हुई है. ठीक है जी. और जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट. दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, फैसल चट्ठा साहब होते हैं, बड़े मजे के खाने बनाते हैं, जाओ खाओ तो मेरी तरह जान बनाओ. हैं जी, एक रेस्टोरेंट है इनका 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में और इसका नंबर है 9052323663. दूसरा है इनका ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट और इसका नंबर जो है 9052262294. इसके अलावा जी पायल ज्वेलर्स, अगर आपने किसी को खुश करना है, अगर मजद भाई की तरह किसी को हमने खुश नहीं करना तो वो और बात है, क्योंकि मजद भाई तो आप देखते हैं ना रोज नए कपड़े पहन के आए होते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं सारा खर्चा अपने पे और किसी पे नहीं. तो अगर आपको अपने ऊपर खर्चा करना है, अगर आप लेडी है तो आप पायल ज्वेलर्स पे जाओ और आप भी मजद भाई की तरह सिर्फ सारे पैसे जो है उससे अपनी शॉपिंग करके लाओ. दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन और इनका नंबर है 9057907879. अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर आज ISPR की एक प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक इन्होंने कहा है जी कि 23 टेररिस्ट जो हैं उनको मार गिराया गया है. इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था केपी के अंदर जो किया गया था मई 26-27 के अंदर और इसके ये जो इन्होंने ऑपरेशन किया था ये हसन खेल पिशावर का जो डिस्ट्रिक्ट है, छह जो टेररिस्ट थे उनको मारा था यहां पे और मल्टीपल जो हाइड आउट्स हैं उनको भी खत्म किया था. कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला जो हैं उनकी डेथ हुई थी इस ऑपरेशन में. सेकेंड ऑपरेशन टांग के डिस्ट्रिक्ट में हुआ जिसमें के 10 टेररिस्टों की डेथ हुई और तीन लोग जो हैं उनको पकड़ा गया था जनरल एरिया ऑफ बाग का, खैबर का जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है. 7 जो टेररिस्ट हैं उनको मारा गया और थर्ड ऑपरेशन की ये बात है. थर्ड ऑपरेशन जो है बाग में हुआ था और जिसमें के 7 टेररिस्ट मारे गए हैं और 2 इंजर हुए हैं. इसके अंदर 5 जो सोल्जर्स थे, नायक मोहम्मद अशफाक बट 32 ईयर्स इनकी एज थी, लांस नायक सैयद दानिश अफकार 30 ईयर्स, सिपाही तैमूर मलिक 32, सिपाही नादर सगीर 22, सिर्फ 22 साल का ये बच्चा था, सिपाही मोहम्मद यासीन ये भी 23 ईयर्स का बच्चा था. इन सबकी डेथ्स हुई हैं. इसके अलावा इन सारे जो टेररिस्ट थे इनसे वेपन्स एमिनेशन और एक्सप्लोसिव जो है बहुत ज्यादा लिए हैं और मिलिट्री कह रही है कि हम सैनिटेशन ऑपरेशन जो है यहां पे किए हुए हैं. आज इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब और उसमें उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान की सॉयल जो है कॉन्स्टेंटली उसको पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जा रहा है और उन्होंने आज कहा है कि जो TTP के टेररिस्ट आपके पास हैं उनको फौरन वापस किया जाए. वो ये बात कर रहे थे इन रिलेशन टू बिशप टेरर अटैक जो कि चाइनीज के ऊपर इस्लामाबाद में जो बिशप में जो किया गया था, चाइनीज जो सिटीजन्स थे उनके ऊपर. तो इस्लामाबाद में आज ये एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे विद नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ऑफिशियल्स. इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमने अफगानिस्तान को बहुत दफा कहा है कि अपनी सॉयल को हमारे खिलाफ यूज आप ना होने दें टेररिज्म के लिए, लेकिन हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में हम ताल्लुकात अच्छे नहीं चाह सकते हैं. आपको पता ही है कि जो बिशम का टेरर अटैक हुआ था इसमें 6 लोगों की डेथ हुई थी जिसमें 5 चाइनीज नेशनल्स थे, जबकि एक सुइसाइड बॉम्बर जो था उसने जो है अपनी लाके स्कूटर जो थी इनकी बस को मारी थी जो कि ये कैरी कर रहे थे स्टाफ को दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में शंगला के एरिया में मार्च में इसी साल में.
तो उसके बाद जो है फिर ये इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी, जो इनका ड्राइवर था पाकिस्तानी उसकी भी डेथ हो गई थी, तो पता चला था कि टीटीपी के जो लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि चाइना के साथ जो है हम अपने ताल्लुकात को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो है ताल्लुकात बने रहें और इसीलिए उनके नेशनल्स की हिफाजत जो है करना हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। तो ये जनाब आज सारी बातचीत की। केपी और सेंटर के बीच में आपको पता ही है कि काफी हॉट वर्ड्स चलते हैं, क्योंकि जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी और सेंटर के साथ काफी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो थे इस्लामाबाद में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। इनके साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी अवेस अहमद खान लगारी भी यहां पर थे। इससे पहले जो था चीफ मिनिस्टर साहब ने थ्रेटन किया था कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये बिल्कुल जो केपी के लोग हैं उनको प्रॉपरली पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही और फिर ये सारे का सारा इसका कंट्रोल जो है ये खुद ले लेंगे। इसके अलावा भी काफी सेंटर के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। आज इन दोनों ने जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा जी कि फेडरल और प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मिलकर काम करेंगे ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके, उनके लिए अच्छा काम किया जा सके। उन्होंने कहा जी कि केपी जो है पूरे पाकिस्तान को पावर सप्लाई करता है लेकिन उसके अपने जो सूबे के अंदर जो है लोगों के पास लोड शेडिंग है और कोई भी चीप पावर उनको नहीं मिल रही है, तो इसलिए अब हम बैठ के फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया फेडरल गवर्नमेंट का कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेडरल गवर्नमेंट समझती है। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब को कोट करते हुए कहा जी कि हमारी लड़ाई किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं है, हम सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं लेकिन केपी के अंदर मेरे लोगों को फौरन रिलीफ चाहिए है। नैब जो है जी उसने आज एक नया लॉ लाया है और उसके मुताबिक वो डिटेन कर सकते हैं जो लोग एक्यूज्ड हैं डिफरेंट केसेस में फॉर 40 डेज, क्योंकि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने आज नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 जो है उसके ऊपर साइन किया है और इसमें उन्होंने कहा जी कि रिमांड टाइम भी जो है एक्यूज का वो भी अंडर नैप केसेस एक्सटेंड किया जा सकता है फ्रॉम 14 डेज टू 40 डेज। इसके अलावा जो सेंटेंस ऑफ ऑफिसर कन्विक्टेड है फॉर फ्रेमिंग चार्जेस बेस्ड ऑन इल विल दैट्स बीन रिड्यूस्ड टू 2 ईयर्स फ्रॉम 5। गिलानी साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन एक्ट जो है उसके अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 के ऊपर भी सिग्नेचर किए और इसमें जो पोल ट्रिब्यूनल्स थे यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे उसमें उन्होंने कहा जी के रिटायर्ड जजेस को लगाएं अलॉन्ग साइड सर्विंग ज्यूरिस। गिलानी साहब ने ये जो साइन किए हैं इसमें उन्होंने इसलिए किए हैं क्योंकि जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट जरदारी हैं वो आजकल मुल्क में नहीं है और दुबई गए हुए हैं, तो इसलिए इनको फिर ये आज सारा करना पड़ा। तकरीबन 1400 के करीब लोग थे, बच्चियां थीं जो कि पढ़ रही थीं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हरिपुर में, जब वहां पे आग लग गई लेकिन फॉर्चुनेटली सब बच्चों को और स्टाफ को जो है यहां पे सिरी कोर्ट का जो ये एरिया था हरिपुर का इससे बड़ी हिफाजत से निकाल लिया गया है। हरिपुर रेस्क्यू 1122 के जो स्पोक्स पर्सन है फराज जलाल, उन्होंने ये चीज कंफर्म की थी। उन्होंने कहा जी कि बिल्डिंग को तो बहुत ज्यादा डैमेज मिला है इसलिए कि कुछ बहुत सारा हिस्सा जो है वो लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन फिर भी TMNA और गाजी के जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने लोकल रेजिडेंट्स के साथ मिलकर आग को बुझाने की कोशिश की, क्योंकि फायर ब्रिगेड जो है इस मुश्किल इलाके में नहीं पहुंच सकते थे। चीफ सेक्रेटरी केपी जो है नदीम असलम चौधरी, उन्होंने भी कहा जी कि यहां पे जो आग लगी थी ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, क्योंकि और इसके अंदर कोई ढूंढ रहे थे लोग शायद टेररिज्म का कि ये लड़कियों का स्कूल है, शायद इसलिए किसी ने आग जानबूझ के लगाई है। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी इसके अंदर बात नहीं है। कंगना रनावत साहिबा जो हैं जी उन्होंने आज एक चीज बड़ी क्लैरिफाई की है, क्योंकि उनके बारे में ये ख्याल आ रहा था कि शायद उनके ताल्लुकात एक गैंगस्टर जो हैं अबू सलाम जिसका नाम है उसके साथ हैं, और ये तस्वीरें उस वक्त से आनी शुरू हुई हैं जबकि ये बीजेपी की कैंडिडेट बनी है हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके से। आज इसके ऊपर इन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा जी कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस तस्वीर में वो इस आदमी को जो अलेजली गैंगस्टर कहा जा रहा है अबू सलाम उसके साथ खड़ी हुई है और स्माइल कर रही है, और उन्होंने कहा जी कि ये कांग्रेस जो है सारी चीजें फैला रहा है, ये जो आदमी है मेरे साथ ये कोई गैंगस्टर नहीं है, ये बड़ा रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है मार्क मैनुएल और ये फॉर्मर एंटरटेनमेंट एडिटर था टाइम्स ऑफ इंडिया का, और ये एक फिल्म की प्रमोशन चल रही थी वहां की एक पार्टी थी जिसपे कि मैं इनसे मिली थी, तो मेरे बारे में गलत खबरें जो हैं वो ना फैलाई जाएं। करण जौहर साहब ने आज अनाउंस किया है जी कि वो अपनी एक नई फिल्म धड़कन 2 जो है अंडर धर्मा प्रोडक्शंस जो है वो करेंगे और इसमें जो लीड रोल है वो निभाएंगे सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति दिमरी। इससे पहले भी लास्ट ईयर जो है ये खबरें आई थी कि शायद करण जौहर जो है धड़कन 2 बनाएंगे, तो उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई किया था। उन्होंने कहा था जी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज इंस्टा के ऊपर उन्होंने ये पोस्टर जो है वो पोस्ट करते हुए कहा कि ये फिल्म जो है शाजिया इकबाल बनाएंगी और ये थिएटर्स के अंदर ये मूवी आएगी नवंबर 22 को। इसमें जो देखा जा रहा है जो प्रमोशनल जो पोस्टर्स अब सामने आ रहे हैं उसमें सिद्धार्थ कह रहा है विधि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जिसपे कि तृप्ति जो है बोलते हुए सुनाई दे रही हैं कि तो फिर मैं क्या करूं, मैं ये मेरी फीलिंग्स हैं, इस फीलिंग्स को मैं कैसे चेंज करूं। तो अब जाहिर है कि होएगा तो लव स्टोरी, लेकिन अब कैसी है लोग जो हैं अब इसका इंतजार करेंगे। पाकिस्तानी जो बहुत बड़े स्टार थे तलत हुसैन साहब, दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई थी, पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड और सेलिब्रेटेड एक्टर्स थे, वो उनकी डेथ कराची के अंदर लॉन्ग इलनेस के बाद जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है। उनकी एज 83 ईयर्स थी। उन्होंने काम रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया था, फिर टीवी थिएटर सिनेमा में काम किया, हिंदुस्तान में भी काम किया और उसके बाद ये बहुत सारी इनकी जो मशहूर सीरीज थी जैसे कि बंदिश, कारवां, हवाएं, परछाइयां, उनमें, और फिर एक फिल्म थी इंडियन सौतन की बेटी, उस पर काम किया। इनकी जो डेथ की खबर थी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के जो प्रेसिडेंट हैं अहमद शाह ने और इनकी बेटी जो है उन्होंने दी थी। इनकी बड़ी जबरदस्त वॉयस थी, उसकी वजह से ये बड़ा स्टैंड आउट करते थे, बड़ा इनका यूनिक एक्टिंग स्टाइल था। बाहर से पढ़ के आए थे और बहुत सारी फॉरेन फिल्म्स में और टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया था। खासतौर पर इनका जो काम बड़ा मशहूर था वो चैनल 4 की जो सीरियल थी ट्रैफिक और फैमिली प्राइड, उसके अंदर किया था। इसके अलावा इनको अमेंडा अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल इन 2006 मिला था इन नॉर्वेजियन फिल्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो कि 2005 में आई थी। इन्होंने जो जिना आई थी मूवी 1998 की उसके अंदर भी गेस्ट अपीयरेंस दी थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इन्होंने बहुत ग्रेट सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान टीवी थिएटर फिल्म और रेडियो को, इनकी सर्विसेज को हमेशा याद रखा जाएगा और जो वैक्यूम इनके जाने से क्रिएट हुआ है उसको बिल्कुल भी भरा नहीं जा सकता है। तो ये वाकई लोगों ने आज बहुत अफसोस किया। मेरे अपने भी बड़े फेवरेट थे तलत हुसैन साहब, बहुत मुझे बहुत, मैंने इनकी वो देखी थी ट्रैफिक, तो बहुत अच्छा इन्होंने रोल उसमें प्ले किया था और बड़ा बल्कि खतरनाक था। अगर आपने ट्रैफिक नहीं देखी तो आप जरूर देखें, हेरोइन ट्रैफिकिंग के ऊपर जो है वो है और कैसे वो ट्रैफिकिंग होती है, कितने खतरनाक तरीके हैं उस पर थी। शाहिनशाह अफरीदी साहब जो हैं जी, उन्होंने जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 अब होने वाला है उसमें बाबर आजम का वाइस कैप्टन बनने से ना कर दिया है। सोर्सेज के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने शाहिनशाह अफरीदी को कहा था कि वो ये रोल जो है एक्सेप्ट करें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो ये रोल नहीं लेना चाहते हैं। सोर्सेज कहते हैं जी कि शाहिनशाह अफरीदी को जिस वक्त T20 कैप्टनसी से हटाया गया था तो आफ्टर जस्ट 5 मैचेस, तो उसके बाद उन्होंने बैठ के बहुत ज्यादा गौर किया था, तो उसी के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं टीम की यूनिटी T20 वर्ल्ड कप से पहले खराब नहीं करना चाहता। इसकी वजह यह भी है कि इनके जो फादर इन लॉ हैं शाहिद अफरीदी, वो इनको काफी इनके करियर के डिसीजंस में एडवाइस देते रहते हैं और उन्होंने इनको एडवाइस दिया था कि ये कैप्टनसी वगैरह छोड़ो, अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में बहुत आएंगी, इस वक्त तुम अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करो। तो यही सामने आई है कि ये आप अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा गौर करना चाहते हैं। और जनाब वीकेंड पे हुआ पाकिस्तान ते इंग्लैंड दा सेकंड T20, जो पाकिस्तान हार गया 23 रन से। दिस मैच वाज बीइंग प्लेड एट बैस्टन स्टेडियम बर्मिंगम में इंग्लैंड के अंदर और जो पाकिस्तान को टारगेट दिया गया था वो 184 का दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान वाज बोल्ड आउट फॉर 160। ये इंग्लैंड की 8th विन है इन द लास्ट 11 T20 मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान। और फखर जमान जो है अलबत्ता उन्होंने बड़ा अच्छा खेला था, उन्होंने बनाए थे 45 रन्स ऑफ 21 बॉल्स, बाबर आजम ने 32 ऑफ 26 बॉल्स, इफ्तिखार अहमद ने 23 ऑफ 17, इमाद वसीम ने 22 ऑफ 13। जो इंग्लैंड के रीस टॉपली थे उन्होंने 3 विकेट्स ली थी, इसके अलावा मुइन अली, जोफ्रा आर्चर ने 2-2 और क्रिस जॉर्डन और आदिल राशिद और लियाम लिविंगस्टोन ने 1-1। जॉस बटलर जो थे उन्होंने बड़ी ग्रिटसी जो गेम खेली, उन्होंने 84 रन्स बनाए ऑफ 51 बॉल्स और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ा एक रिकॉर्ड भी कायम किया, 3000 रन्स उन्होंने T20 क्रिकेट में किए हैं। सो ही हैज बिकम द 9th प्लेयर टू डू सो इन T20। इमाद वसीम जो थे उन्होंने वैसे बड़ी जबरदस्त इनिंग शुरू की थी पाकिस्तान की, फोर्थ ओवर के अंदर ही फिल सॉल्ट को आउट कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड ने बड़ी अच्छे तरीके से रिकवर किया। विल जैक्स जो है उन्होंने 71 रन की फिर पार्टनरशिप बनाई, शाहीन शाह अफरीदी ने ली 3 विकेट्स, इमाद और रऊफ ने ली 2 ईच और शादाब और आमिर जो है वो कोई भी विकेट ना ले सके। T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मेजर क्लैश इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाला है वो दिखाया जाएगा जून 9 को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। इसका जिक्र जो है आज किया है आईसीसी ने, उन्होंने कहा जी कि हम फैन पार्क्स जो हैं वो बना रहे हैं, एक ह्यूज किस्म की स्क्रीन वहां पे लगाई जाएगी 11,000 जाहिर है किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एक्चुअल मैच जो खेला जा रहा होगा न्यूयॉर्क के नसू काउंटी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और आईसीसी ने इसलिए इस मैच के लिए 10 डिफरेंट फैन क्लब्स पार्क्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, जिसमें के कुछ न्यूयॉर्क का एक सिडार क्रीक पार्क है इन सीफोर्ड, इंदिरा गांधी इंडोर एरिना न्यू दिल्ली में और भी हैं। ये पार्क जो है ये 90 मिनट्स गेम स्टार्ट होने से पहले खुलेगा और खुला रहेगा 60 मिनट्स इवन आफ्टर द गेम। इसमें उन्होंने कहा है जी कि आईसीसी ने कि 22 वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे जो हैं वो दिखाए जाएंगे, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, न्यू दिल्ली में और पिंडी में अलॉन्ग विद अदर सम अदर पार्क्स एज वेल, जिसके के अंदर लाइव एंटरटेनमेंट भी होगी, डीजे होंगे, फूड एंड ड्रिंक आउटलेट्स होंगे, क्रिकेट एम्बेसडर्स होंगे और फैन एक्टिविटी और फैमिली एक्टिविटीज भी होंगी। ये जो सेकेंड T20 हुआ है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, इसमें शादाब खान की बहुत ज्यादा चूंकि बुरी परफॉर्मेंस थी तो शायद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैंने शादाब खान साहब से बात की है और मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो मैच हुआ उसमें तुम क्यों नहीं कुछ कर सके, जैसे कि तुम्हारी बैड परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट पिशावर जलमीन 2021। एक टीवी चैनल पर बात कर रहे थे, वो कहते हैं जी मैं शादाब को कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं, मैं हमेशा जो प्लेयर्स रट डाउन होते हैं उनसे मैं बात करता हूं, शादाब का मैं देख रहा हूं बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा है तो मैंने उससे पूछा कि तुम ये मिस्टेक्स कौन कर रहा हो, तुम्हें कौन गाइड कर रहा है, तुम्हें ठीक तरह से क्यों नहीं गाइड किया जा रहा, तुम क्यों नहीं इन चीजों के बारे में ख्याल कर रहे हो। तो कहता है कि जी होपफुली आप देखेंगे कि एक डिफरेंट शादाब आपके सामने अब आएगा, क्योंकि वो कहता है जी जब शादाब अच्छी बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान जीतता है, तो है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लेकिन मुझे पता है कि बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो इन प्रेशर्स को बिल्कुल जो है वो डील करते हैं। और जी ऑस्ट्रेलिया की वॉलीबॉल टीम जो है पाकिस्तान में पहुंची हुई है एंड दिस टीम इज बीइंग लेड बाय नहीमिया मोटे और ये 3 मैच सीरीज जो है पाकिस्तान में खेलेंगे May 28, 29 और 30 को पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। ये सारे मैचेस जो हैं 6:30 PM को शुरू होंगे। पाकिस्तान जो है बड़ी अच्छी उसकी स्टैंडिंग हुई हुई है, अभी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है जीत के पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम जो है इट इज कैप्टन बाय मुराद जहान, तो बड़े थ्रिलिंग जो हैं ये मैचेस देखने को मिलेंगे। और हमारे अपने आपके सारे राफेल नडाल साहब लॉस्ट इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ फ्रेंच ओपन टू अलेक्जेंडर ज़ेवरेव 6-3, 7-6, 6-3। ये जो है आपको पता ही है कि रोनाल्ड गैरस चैंपियन है 14 टाइम्स के एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम के नडाल जो है बीट किया गया है 2 मैचेस में बैक टू बैक ऑन क्ले कोर्ट्स। और जो है ये इन्होंने जो है आपको पता ही है कि क्ले कोर्ट के ऊपर बहुत सारे ग्रैंड स्लैम्स जीते हुए हैं, 112 अगेंस्ट 4 जो इन्होंने लूज किए हैं, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है लेकिन आज बड़ा ही ये सैड रहा। अब नहीं खेल सकते मज भाई, अब ये नहीं खेल सकते।
आई थिंक उसको इंजरीज इतनी ज्यादा है,
इंजरीज बहुत ज्यादा है,
आई डोंट थिंक ही इज गोना कम बैक।
हाँ बिल्कुल,
बट यू नेवर नो।
हाँ यू नेवर नो,
वुड्स के लिए भी लोग ये कहते थे।
बिल्कुल। और जनाब KKR जो है आज यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स आज फाइनल था IPL का, उसमें वो जीते हैं और उन्होंने हराया है सनराइजर्स हैदराबाद को। और जो है वो ये MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर फाइनल मैच हो रहा था और वैसे तो बहुत ही छोटा स्कोर था जो कि कमाल किया आज KKR के बोलर्स ने और 114 रन्स पे पूरी टीम को आउट कर लिया। KKR ने ये स्कोर 10.3 ओवर्स में ही बना लिया और जो है इसकी सनराइज हैदराबाद की 8 विकेट्स जो थी वो इन्होंने डाउन की थी और जो है वो इस तरह से ये लोग जीते। अय्यर साहब जो हैं इनके लिए उन्होंने बड़ा जबरदस्त गेम खेला, 52 नॉट आउट ऑफ 26 बॉल्स। और टीम के जो ओनर हैं, जाहिर है कि शाहरुख खान साहब बड़े एस्थेटिक थे वो, और वो एकदम से कूद के जंगला जो है आ गए। अपने बच्चे जो हैं इनके, सुहाना, एब्राम और आर्यन, उनके साथ यहां पे थे। और फिर इन्होंने खुशी के अंदर जो केकेआर का मेंटर है गौतम गंभीर, उसको गले लगाया और उसका माथा चूमा। इससे पहले भी जो है ये जीत चुके हैं केकेआर वाले, और ये जो हैं आज इस दफा जो इनकी ये जो थी ये तीसरी इनकी जीत थी केकेआर की। तो इस तरह से जो है, और जनाब अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं दो स्पेशल रिपोर्ट्स, और वो दो स्पेशल रिपोर्ट्स जो हैं हम आपके साथ जो है वो अभी करेंगे एक मिनट में।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
جی تو ہم نے میں نے جیسے آپ کو بھی بتایا کہ آج ہم دو اسپیشل رپورٹس آپ کے ساتھ کریں گے۔ ایک تو یہ جو رفا کے اوپر اٹیک کیا ہے اس نے اسرائیل نے، اس کے اوپر دنیا نے آج کیا ریئیکشن شو کیا۔ ویسے اس دنیا کی ریئیکشن کا کچھ فرق تو نہیں پڑتا زیادہ، کیونکہ اٹ از جسٹ اباؤٹ یو نو لپ سروس، کچھ کروار تو رہے نہیں ہے، تو بلکہ دبا دب اس کو جو ہے اسرائیل کو ہیلپ دے رہے ہیں۔ اور دوسری جو آج ہماری اسپیشل رپورٹ